नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। डिजिटल वित्तीय सेवा फर्म पेटीएम का ऋण वितरण अप्रैल जून तिमाही में लगभग 9 गुना बढ़कर 5,554 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि इस दौरान 84.78 लाख लेन देन हुए और ऋण वितरण की वार्षिक दर 24,000 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गई। कंपनी ने एक साल पहले की इसी अवधि में कुल 632 करोड़ रुपए के 14.33 लाख ऋण दिए थे। कंपनी ने कहा कि जून 2022 तिमाही के दौरान उसके द्वारा दिए गए ऋण की संख्या सालाना आधार पर 492% बढ़कर 85 तक पहुंच गई। प्रौद्योगिकी मंच के जरिए टैक्सी सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ऊबर ने दुनिया भर के बाजारों में आक्रामक रूप से प्रवेश करने के लिए कई अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया। रविवार को जारी एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक ऊबर ने श्रम और टैक्सी कानूनों में ढील पाने के लिए राजनीतिक हस्तियों की लॉबिंग की, नियामकों और कानूनी जांच को विफल करने के लिए स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया, बरमूडा और अन्य टैक्स हेवन से धन भेजा तथा अपने ड्राइवरों के साथ हुई हिंसा की घटनाओं का इस्तेमाल जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए किया। खोजी पत्रकारों के एक गैर लाभकारी नेटवर्क इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने ऊबर के आंतरिक दस्तावेज, ईमेल, इनवॉइस और अन्य दस्तावेजों की छानबीन की। इस रिपोर्ट और ऊबर से संबंधित दस्तावेजों को सबसे पहले ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में लीक किया गया, जिसने उसे एक समूह के साथ साझा किया। ऊबर के प्रवक्ता जिल हेजल बेकर ने अतीत में हुई गलतियों को स्वीकार किया और कहा कि 2017 में नियुक्त सीईओ दारा खोस्त्रोशाही को ऊबर के संचालन से जुड़े हर पहलू को बदलने का काम सौंपा गया था। जब हम कहते हैं कि ऊबर आज एक अलग कंपनी है, तो हमारा मतलब ये है कि कंपनी के 90% वर्तमान कर्मचारी दारा के सीईओ बनने के बाद ऊबर में शामिल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में स्थापित ऊबर ने टैक्सी नियमों को दरकिनार करने और राइड शेयरिंग ऐप के माध्यम से सस्ती परिवहन की पेशकश की। एशियाई बाजारों में कमजोरी और आईटी शेयरों में बिकवाली के चलते प्रमुख शेयर सूचकांकों में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट हुई। ऐसे में 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 330.14 अंक गिरकर 54,151.70 पर आ गया, जबकि व्यापक एनएससी निफ्टी 102.75 अंक फिसलकर 16,117.85 पर था। सेंसेक्स में भारतीय एयरटेल, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, विप्रो, इंफोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट गिरने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। निवेशकों को खुश करने में नाकाम रहने के बाद टीसीएस 4.54% लुढ़क गया। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस ने शुक्रवार को जून तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इस दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 5.2% बढ़कर 9,478 करोड़ रुपये हो गया। इस बीच एनटीपीसी, एमएनएम, आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक हरे निशान में थे। अन्य एशियाई बाजारों में शंघाई, हांगकांग और सोल में गिरावट थी, जबकि टोक्यो में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.37% की गिरावट के साथ $106.63 प्रति बैरल पर आ गया। घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती और जोखिम से बचने के रुख के चलते रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे टूटकर 79.33 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने रुपये की कमजोरी को थामने में मदद की। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.30 पर कमजोर खुला और बाद के कारोबार में 79.33 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 7 पैसे की कमजोरी को दर्शाता है। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा 79.24 और 79.35 के दायरे में रही। रुपया पिछले सत्र में डॉलर के मुकाबले 79.26 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.31% बढ़कर 107.34 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.63% की गिरावट के साथ $106.35 प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 109.31 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में दोषी ठहराते हुए 4 महीने की जेल की सजा सुनाई के साथ 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में माल्या पर कोर्ट से जानकारी छुपाने का आरोप भी सही साबित हुआ है। सजा सुनाने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को आदेश भी दिया है कि आने वाले 4 हफ्तों के अंदर ब्याज के साथ $40 मिलियन लौटाएं, नहीं तो सभी संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि माल्या को 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम की ओर से दायर केस में पारित आदेशों के उल्लंघन करते हुए अपने 4 बच्चों को $40 मिलियन हस्तांतरित करने का दोषी पाया गया था। अदालत ने आज सजा सुनाते हुए कहा कि माल्या को अपने आचरण के लिए कोई पछतावा नहीं है और सजा की सुनवाई के दौरान वो कोर्ट के सामने कभी भी पेश नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए उस पर पर्याप्त सजा दी जानी चाहिए और ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि विवादित राशि आदेशों के निष्पादन के लिए उपलब्ध हो। इस कारण कोर्ट माल्या को $40 मिलियन 8% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश देती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।